चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम्। श्रीगुरु न वैष्णववाश्य श्रीरूपं सग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राधे मेरी स्वामिनी राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव
सभी लोग प्रेम से गाइए,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन
राधा गिरी धारी राधा गिरी जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा
जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा
जगन्नाथ जगन्नाथ
निंदन्तं पुलकोत्करेण विकस अन्नीपप्रसुञ्छविं प्रोद्भिर्कृत्य भुजद्वयं हरिहरि नृत्यन्तं द्रुतमाश्रु निर्जरचये सिञ्चन्त भूर्वेतलं गायन्तं निजपार्षदे परिवृतम् श्रीगौरचन्द्रम् श्रीगौरचन्द्रं नमः श्रीगौरचन्द्रं नमः वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने यस्या कदापि वसनान् चलखेलनोत्थ धन्याति धन्यपवने न कृतार्थमानि योगी मधुर्गमगति मधुसूदनोऽपि तस्या विश्वानुभवो दिशेऽपि यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहका तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो यः स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिते तिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणया हपुराण गुह्यं तं याससूनुमुपया मे गुरु मुनीना अग्रे करुणा मत पांडवा दुशासनेन हतवस्त्रकेशा कृष्णा तदाक्रो शदनन्यनाथा गोविन्द दामो दर्मा विष्णो मधुकेट भारे भक्तानुकंपीन भगवन् मुरारे त्रायस्व मामना थलो गोविंद दामो धर्माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण जिहवे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविंद दामो धर्माधवेति प्रचोदिताजे अपुरा सरस्वती वितन्वता च स्यसतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणाप्रा दुर्भूत्किलास्यत समे ऋषीणा ऋषभ प्रसीदता भुरतेर्महतभी यैमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमोषपूर पुरुष भुङ्क्तेर्गुणानशो रसषोडशात्मक सुलङ्कश्रेष्ठ भगवान् वचांसि मे।
हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्तापित 7 दिवसीय इस भागवत सप्ताह में हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम हमारे आराध्य भगवान श्री श्री राधा गिरधारी के चरणों में शत शत नमन करता हूं। तत्पश्चात अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ, जगत के नाथ जगन्नाथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात उनकी बहन सुभद्रा जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और भक्ति में भजन साधन में बल प्रदान करने वाले बलदेव जी के चरणों में शत शत नमन करता हूं। तत्पश्चात साक्षात भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का भाव ग्रहण करके आज से 523 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए, ऐसे करुणा वरुणालय अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जिनकी कृपा से एक मूर्ख एक बालक भी शास्त्र के सिद्धांत को समझ सकता है। तत्पश्चात श्रीमद् भागवतम के मूल टीकाकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मूल भागवत वेदव्यास जी प्रणीत भागवत को बहुत सुंदर ढंग से कलयुग के जीवों के लिए व्याख्या इत्यादि प्रदान की। और उन्हीं के साथ साथ हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में आने वाले षड गोस्वामी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। और इसके साथ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, इस सब आचार्य को प्रणाम करते हुए इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जिनकी कृपा से ये भागवत और भगवत गीता का ज्ञान इतने भीषण युग में कलयुग में पूरे विश्व भर में प्रचार प्रसारित हो रहा है। और तत्पश्चात हमारे गुरुदेव प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय भागवत भूषण श्री राधा गोविंद गोस्वामी दास जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और नमन करता हूं, जिनकी वाणी को सुनकर जिनकी कृपा से मैं आप सबके सामने भागवत कहने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और उसी के साथ आप सब वैष्णव भक्त धर्म प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि शत शत प्रणाम करता हूं, क्योंकि वास्तव में मैं कोई कलाकार नहीं हूं, मैं कोई पंडित नहीं हूं, हम तो एक भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी और साधारण भक्त हैं। हृदय में चाह है भगवान को प्राप्त करने की और भगवान का कफन बांधकर हम निकलते हैं वह जो बुलवाते हैं वह बोल लेते हैं। वास्तव में हमें कोई शक्ति नहीं है कि व्यास मंच के ऊपर बैठकर भागवत का विस्तार कर सके, परंतु एक आशा हृदय में जरूर है कि हमारे प्रभु का भगवान का नाम दीन दयाल है, और दीन दयाल का अर्थ होता है दीनों के नाथ, दीन का अर्थ होता है गरीब, अर्थात भक्ति में गरीब या धन में गरीब। भगवान दीनों के नाथ हैं, और जिस दिन से यह पता चला है कि कृष्ण दीनों के नाथ हैं, एक कवि बहुत सुंदर कहते हैं, दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। प्रभु प्रभु मैंने जब से सुना है कि आपका नाम दीन दयाल है, तब से मैं मेरे मन में ठान बैठा हूं कि तेरो कहाए के जाऊं कहाए, अब तेरे ही नाम की फैट कसी है, अब तेरा बन चुका हूं और तुझे छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं। हां प्रभु, जब मैं आपकी भक्ति करता हूं, आपका नाम लेता हूं, तो संसार के लोग मुझे पागल कहते हैं, मूर्ख समझते हैं, और लोग मेरे पर हंसी उड़ाते हैं, परंतु मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। संसार के लोग मुझ पर जितनी भी हंसी उड़ाए, मुझे कोई दुविधा नहीं है। क्यों? क्योंकि हे हो मुरारी पुकारी कहूं, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। मैं आपको शत शत समर्पित हो चुका हूं, अब संसार के लोग यदि मुझ पर हंसे भी तो वो मेरी हंसी नहीं है, वो तो प्रभु आपकी हंसी है। बस यही चाह और इसी आशा के साथ हम इस संसार में अलग अलग जगहों पर श्रीमद् भागवत को प्रकट करते हैं, और अंत में कुछ दिन पहले जो बहुत बड़ा हादसा हुआ, उन महानुभावों को भाव से और हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और कृष्ण से प्रार्थना करता हूं, प्रणाम करता हूं कि इन महानुभावों को, भगवान के परम भक्त को सदगति प्रदान करे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और भगवान से यह भी कहना चाहता हूं कि प्रभु उन्हीं के मोक्षार्थ, उन्हीं के उद्धार के लिए हम यहां पर एकत्रित हुए हैं, और यह भागवत सुनकर हम हमारा तो उद्धार करेंगे ही, पर इस भागवत का फल उसे अर्पण करके हम उन महानुभावों का उद्धार करेंगे और उसे सदगति प्रदान करके भगवान के पास भेजेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम। तो प्रायः हमारे इस भारतवर्ष में परंपरा है कि किसी की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के पीछे गरुड़ पुराण की कथा कहते हैं। कुछ लोगों के मन में प्रश्न भी हो रहा होगा कि गरुड़ पुराण की कथा होनी चाहिए तो भागवत क्यों किया है, परंतु भक्तों, गरुड़ पुराण में जीव की गति का वर्णन किया गया है, किस प्रकार से जीव भगवान के धाम से भगवान से विमुख होकर इस भौतिक जगत में आता है, और इस भौतिक जगत के भोगत कर किस प्रकार से इस मृत्यु जगत से वापस लौटता है, बहुत विस्तृत रूप में वर्णन है। जीव का जन्म होता है, जब इस भौतिक जगत में, तो माया के द्वारा उसे बहुत दुख दिया जाता है, क्योंकि वास्तव में जीव भगवान का सनातन अंश है, परमात्मा का अंश है, इसीलिए इसे आत्मा कहा जाता है। आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा का नित्य धर्म, नित्य कार्य है परमात्मा की सेवा करना। और जब यह आत्मा परमात्मा की सेवा नहीं करना चाहता है और स्वयं परमात्मा बनना चाहता है, तब भगवान इसे अपने धाम से छोड़कर इस भौतिक जगत में भेजते हैं। और जब जीव इस भौतिक जगत में आता है, गरुड़ पुराण में और अन्य शास्त्रों में वर्णन है, वो बहुत दुख भोगता है। प्रत्येक जीव को इस जगत में जन्म लेने के लिए माता के गर्भ में आना होता है। बिना माता के गर्भ में आए किसी का जन्म नहीं होता है। और माता के गर्भ में कितनी दुविधा है, कितना कष्ट है। भागवत के तृतीय स्कंध में भगवान कपिलदेव अपनी माता देवहूति को वर्णन करते हैं कि मां, जब छोटा सा बालक मां के गर्भ में होता है तो बहुत दर्द होता है। गंदी हवाओं के बीच में उसे रखा जाता है, जहां पर मल और मूत्र पसार होता है, और ऐसी जगह पर उस बालक को बिल्कुल कंजेस्टेड स्थिति में, बहुत कम जगह में रखा जाता है। वहां घूमने फिरने की व्यवस्था नहीं है। जैसे यदि किसी को एक पेटी में बंद कर दिया जाए तो वो 5 मिनट भी नहीं रह सकता है, परंतु ऐसी छोटी सी जगह में उस बालक को 9-9 महीने तक रखा जाता है। कल्पना कीजिए भक्तों, कितना कष्ट होता होगा उस बालक को। इतना ही नहीं, यहां तक वर्णन है, जब बालक माता के गर्भ में होता है तब उसे 10 बिच्छू एक साथ डंक मारे उतना दर्द का अनुभव होता है। अब एक बिच्छू भी किसी को डंक मारा हो तो व्यक्ति बहुत दुखी होता है। 10-10 बिच्छू एक साथ डंक मारे उतना दर्द का अनुभव होता है। और इसी के साथ वो मां जब तीखा खाती है, गरम खाती है, तो यह सारा प्रभाव उस गर्भ में, पेट में रहने वाले बालक के ऊपर होता है। और जब इस प्रकार का पदार्थ उस गर्भवती मां खाती है तो उस बालक की कोमल कोमल चमड़ी तिल मिला जाती है, हिल जाता है वो बालक। इसलिए आपने देखा होगा माता के गर्भ में कभी बालक का सिर ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, बेचारा क्या करे, इतनी परवशता है गर्भ में, इस जगत में। यहां बाहर यदि किसी को दुख हो तो कोने में जाकर रो सकता है, वो रोकर अपने दुख को, दर्द को कम कर सकता है, परंतु मां के गर्भ में इतनी परवशता है कि वो रो भी नहीं सकता है। इतना दुख और दर्द के साथ रोने की भी सुविधा नहीं है भक्तों। भक्तों, जीव का, यह कोई बहुत बड़ी भगवान की कथा नहीं कर रहा हूं, हमारी अपनी आत्म कथा कह रहा हूं। हम सब ऐसी स्थिति से होकर आए, एक से एक दुख माता के गर्भ में दिए जाते हैं, बहुत दुखी होता है। तब गर्भ में रहने वाला बालक भगवान से प्रणाम करता है, प्रार्थना करता है, प्रभु मैं तो सोचा था इस जगत में आकर मैं सुख भोगतूंगा, परंतु जगत में, अब तक जगत में एंट्री नहीं किया हूं, एंट्री के द्वार पर ही इतना दुख है, कल्पना करता हूं जब जगत में जाऊंगा तो कितना दुखी होऊंगा। बालक जगत में आने से पहले ही 9 महीना तक गर्भ में इतना दुखी होता है। भक्तों, इस संसार में रहने वाले कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, हमें भजन भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों हम भगवान का नाम लें। परंतु यह जगत दुख देने के लिए बनाया है, इस जगत में कोई सुखी नहीं है, सब लोग दुखी हैं। चाहे वो रोड़पति हो चाहे करोड़पति हो, सब लोग दुखी हैं, क्योंकि सब लोग मां के गर्भ से आते हैं। तो मां के गर्भ में बहुत दुख और 9-9 महीने तक दुख दिया जाता है, और 9 महीने के बाद जब उस बालक का जन्म होता है, कुछ भक्तों को लगता होगा कि ये प्रभु जी हो सकता है झूठ बोल रहे हैं, परंतु थोड़ी सी बुद्धि लगाइए कि मान लीजिए ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के दरवाजे से कोई रोता रोता बाहर आ रहा है, तो बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि बिल्डिंग में किसी रूम में उसे कुछ दुख और दर्द दिया गया होगा, किसी ने गाली दी होगी, कुछ कष्ट दिया होगा, इसलिए रोकर बाहर आ रहा है। ठीक उसी प्रकार जब मां के गर्भ से बालक का जन्म होता है तब उसकी पहली क्रिया क्या होती है, वह रोता है। यह प्रमाण है, सनातन सत्य है कि गर्भ में वह दुख भोगत कर आया है, इसलिए बेचारा रोते रोते आया है। लेकिन बालक रो रहा है, जन्म हुआ है, इतना दुख दर्द भोगत कर आया है, और संसार के लोग क्या करते हैं, हंसते हैं, तालियां बजाते हैं, थाली बजाते हैं कि हमारे घर बालक का जन्म हुआ, लड्डू और पेड़े बांटते हैं। भक्तों यही है इस संसार के साथ हमारा पहला इंट्रोडक्शन अनुभव। हम कहते हैं ना, ये संसार, संसार में हमारा नाम क्या रहेगा यदि हम भक्ति करेंगे, परंतु संसार कैसा है, जब हम संसार में आते हैं तो जगत के लोग हंसते हैं। तो इस प्रकार से बालक का दुखमय जन्म होता है, और जन्म के बाद भी उसे सुख नहीं होता है, बेचारा ठंडी लग रही है फिर भी मां को कह नहीं सकता है मुझे ठंड लग रही है, और मां भी समझ नहीं सकती है कि इस बालक को क्या चाहिए, वे रोता है और मां बहुत प्रयास करती है। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होता है और इस जीवन में भी कई प्रकार के रोग आते हैं, व्याधि जिसे कहा जाता है। आज इस संसार में इतने रोग हैं जिसे गिनना बहुत मुश्किल है, और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे रोग भी बढ़ रहे हैं। आज से 50 साल पीछे चले जाइए, अपने बुजुर्गों को पूछिए कि आप चिकनगुनिया नाम का रोग जानते थे, पता भी नहीं था ऐसा रोग था। ऐसे कई सारे रोग हैं जो नए 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 निकल रहे हैं, और प्राय सब लोग रोग में ग्रस्त है। जैसे प्रभु जी ने अनाउंसमेंट किया कि प्रभु जी को दर्द है फिर भी यहां पर आए हैं, कौन दर्द में नहीं है, सब लोग को रोग लगा है, कुछ को, कुछ लोगों को टाइफाइड हुआ है, कुछ को मलेरिया हुआ है, जॉन्डिस हुआ है, चिकनगुनिया हुआ है, कैंसर हुआ है, एक से एक रोग है। जैसे कैंसर को ही ले लीजिए, व्यक्ति, जिस व्यक्ति को कैंसर होता है जैसे मोमबत्ती पिघल जाती है वैसे 1-2 महीने में पिघल जाता है, मर जाता है। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो रोग जरूर आते हैं, और रोग बहुत बड़ा दुख का कारण है, क्योंकि रोग जब आता है तो हमें पूछकर नहीं आता है कि मैं आऊं, आपकी इच्छा है तो आ जाऊं, नहीं, न चाहते हुए भी रोग आते हैं, जन्म व्याधि। और इसी के साथ साथ धीरे 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 इस जगत में देवताओं के द्वारा दुख मिलते हैं, जिसे आदि दैविक दुख कहते हैं। आप सोचोगे देवता भी दुख देते हैं, हाँ। कुछ दिनों पहले सुनामी आई थी, समुद्र देवता वरुण देवता थोड़े क्रोधित हो गए, थोड़ा सा जल बढ़ा दिए, 1-3 मिनट में लाखों लोग मर गए। कुछ दिन पहले इंद्र देव कुपित हो गए, ज्यादा वर्षा कर दी, सूरत में हजारों लोग मर गए। 1996 में पृथ्वी माता थोड़ी सी हिल गई, धरती कम हुआ, कच्छ में हजारों लोग मर गए। देवताओं के द्वारा दुख मिलता है भक्तों। कुछ लोग कहते हैं ना, यहां से हमें जो अब तो भक्त बन गए हैं, लेकिन भक्त बनने से पहले कुछ लोग मिले थे, प्रभु हम भक्ति क्यों करें, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है, वही व्यक्ति घर पे जाकर सो गया और तुरंत धरती कंप हुआ, बिल्डिंग गिरा, मर गया। कौन कभी मृत्यु आ जाए, किसी का भरोसा नहीं। देवताओं के द्वारा दुख दिया जाता है, तत्पश्चात हमारे अपने स्वजनों के द्वारा दुख दिया जाता है, जिसे आदि भौतिक क्लेश कहते हैं। भक्तों, हमारे अपने जितना दुख देते हैं उतना बाहर वाला नहीं देता। मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे अपने स्वजन जितना दुख देते हैं उतना पाकिस्तान वाले नहीं देते। सबसे ज्यादा दुख हमारे साथ रहने वाले। अब देखिए, एक पत्नी को उनका पति जितना दुख दे रहा है उतना और कोई नहीं दे रहा होगा, और पति को भी पत्नी से जितना दुख मिलता है उतना किसी से नहीं मिलता है। पड़ोसी से इतना दुख नहीं मिलता है जितना पत्नी और बच्चों से मिलता है। हमारे अपने बहुत दुख देते हैं, क्योंकि बाहर के शत्रु तो शस्त्रों से वार करते हैं। चाणक्य पंडित इस भारत के बहुत महान नीतिकार हो गए, जिन्होंने लिखा है कि शरीरे अरि प्रहरति। अरि जो होते हैं, शत्रु जो होते हैं, वह शरीर पर वार करते हैं, और इस शत्रु का वार किसी हॉस्पिटल में जाकर ठीक भी हो सकता है, परंतु स्वजन हृदयस्तु वा, परंतु स्वजनों का वार तो हृदय में होता है। हृदय में वार करते हैं वह कभी बूझता नहीं है, वह ठीक नहीं होता है। स्वजन बहुत दुख देते हैं, स्वजनों के द्वारा दुख मिलता है। तो बहुत बहुत दुख, इस जगत में रहते हुए जीव केवल दुखी ही होता है, और तत्पश्चात आदि आध्यात्मिक दुख अपने मन के द्वारा दुख मिलता है। हमारा अपना मन हमें जितना दुखी करता है उतना और कोई नहीं करता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो, बांधाय विषया संगे निर्मुक्त विषय मन। मन ही जीव के लिए दुख का कारण है और मन ही जीव के लिए सुख का कारण है। एक नीति में बहुत सुंदर लिखा गया है कि इस संसार में चिता और चिंता दोनों जलाती हैं। चिता और चिंता दोनों समान शब्द है, केवल अनुस्वार नहीं लगा है एक में। चिता और चिंता ये दोनों समान शब्द है और ये दोनों जलाती हैं, परंतु ज्यादा कौन जलाती है? कहते हैं चिता तो मरे हुए व्यक्ति को जलाती है, परंतु चिंता तो जीवित व्यक्ति को जलाते रहती है। और यह चिंता कहां से प्रकट होती है? मन से प्रकट होती है। इसलिए यदि आप चिंता से मुक्त होना चाहते हो तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल उसके पीछे न लगा देना है, अर्थात चिंतन करना है। यदि मन में भगवान का चिंतन करते हो तो चिंता कभी आ नहीं सकती, परंतु वह तो हम करना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम स्वयं भगवान बनकर बैठे हैं। चिंतन भगवान का नहीं होने के कारण मन बहुत दुख देता है, मन के द्वारा दुख। आप गिनिए कितने कितने दुख मिलते हैं। जन्म लेना दुख है, रोग आना दुख है, देवताओं के द्वारा दुख, स्वजनों के द्वारा दुख, मन के द्वारा दुख, और धीरे धीरे यह सब दुख भोगते भोगते व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, और जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तब बहुत दुखी होता है। इस संसार में व्यक्ति सब कुछ बनना चाहेगा, परंतु बूढ़ा बनना कोई नहीं चाहता है। शास्त्र में लिखा है आप कुछ वस्तु को न चाहते होगे वह आपके पास आ जाएगी, आप स्वीकार कर लोगे, परंतु बूढ़ापा स्वीकार करना कोई नहीं चाहता है। कौन चाहता है? कुछ लोगों को बुढ़ापा आ जाता है तो बुढ़ापे को छिपाने के लिए बाल काले करा देते हैं। इस कलयुग में कोई बूढ़े होना नहीं चाहते, इसलिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ब्यूटी पार्लर खुल गया है। आइए कायाकल्प करवा के जाइए, जवान होकर जाइए, परंतु वे जवानी कितने दिन तक टिकती है? आखिर एक ना एक दिन बूढ़ा होना है। और जब बुढ़ापा आता है तब बहुत दुख होता है। शास्त्र में लिखा है बुढ़ापा बहुत दुखदाई है। क्यों? क्योंकि जब बुढ़ापा आता है तो दृष्टिर नश्यते, ये आंखें देखना बंद कर देती है। बर्द तेज बधिरता, कान सुनना बंद कर देते हैं। कोई कितना भी जोर से चिल्लाए, यहां से कुछ लोगों को हो रहा होगा, कितना भी जोर से यहां से बोला जाए परंतु कुछ लोग सुन नहीं पाएंगे। बर्द तेज बधिरता, कान सुनना बंद कर देते। दशनम विहीनम, समस्त दांत गिर जाते हैं एक एक कर। वो बूढ़ा खाना तो बहुत चाहता है परंतु दांत नहीं है, बेचारा खा नहीं सकता है, बहुत दुखी होता है। और सबसे बड़ा दुख क्या होता है? वाक्यम नैव शृणोति बांधव जना। जब व्यक्ति बूढ़ा होता है, जिस बूढ़े ने अपने पुत्र को छोटे से बड़ा किया है, जवान किया है, परंतु बूढ़े होने के बाद वह पुत्र उस बूढ़े की एक बात को नहीं सुनता है। नैव बांधव जना, अपने ही बांधव मित्र हमारी बात नहीं सुनते, चुप करा देते हैं। जब बूढ़ा कुछ राय भी देना चाहता है तो बच्चे कहते हैं आप चुप रहो, आपको कुछ नहीं पता चलता है। तब बूढ़ा मन ही मन में सोचता है कि मेरे द्वारा इसका जन्म हुआ, मैं इसे स्कूल में लेकर गया, पढ़ाया लिखाया, ट्यूशन करवाया, इतना बड़ा किया, और आज वे मुझे कह रहा है कि आप चुप रहो। बहुत दुखी होता है। वास्तव में यदि किसी का पुत्र भक्ति कर रहा है तो ठीक बात है, वह अपने पिता की सेवा करता है, परंतु पुत्र यदि भक्त नहीं है तो वह अपने माता पिता को रखेंगे या नहीं रखेंगे कोई भरोसा नहीं। इसलिए आज आप देख रहे हैं भगवान की भक्ति और गीता और भागवत का ज्ञान कम होते जा रहा है, और इसी के साथ साथ वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जब तक आज के पुत्रों के हृदय में भक्ति नहीं आएगी तब तक संस्कार नहीं आएंगे, गुण नहीं आएंगे। क्योंकि भक्ति करने से समस्त गुण आते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवन अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा। जिस व्यक्ति में, जिस पुत्र में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का उदय हो जाता है उसमें समस्त गुण प्रकट होते हैं। इसलिए हम इस्कॉन वाले कहते हैं कि आपके पुत्र आपको रखेंगे या नहीं रखेंगे उसका कोई भरोसा नहीं है, परंतु उसे कृष्ण का भक्त बना दीजिए, सर्टिफिकेट हम देते हैं कि बुढ़ापे में वे आपको रखेंगे। क्योंकि हमें भगवान पर विश्वास है। भगवान कहते हैं कि भक्ति करने वाले में समस्त गुण होते, परंतु आज भक्ति न होने के कारण बूढ़े को रखा नहीं जाता है, और उस बूढ़े के मृत्यु के दिन बहुत करीब आते हैं। और धीरे 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 इस जीवन की अंतिम लीला जो सबसे दुखदाई है, सबसे कष्टमय है, इस संसार में सबसे दुखदाई, सबसे बड़ा दुख क्या है? शास्त्र में लिखा गया है मृत्यु। और एक न एक दिन मृत्यु जरूर आती है। हम चाहते हैं कि न मरे, मरना कोई नहीं चाहता है, परंतु मृत्यु आ ही जाती है। इस संसार में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं अपने ग्रंथ में, कुछ लोग सोचते हैं कि हम अमेरिका जाएंगे, कुछ लोग सोचते हैं कि हम करोड़पति बनेंगे, कुछ लोग सोचते हैं कि हम अच्छी लड़की से विवाह करेंगे, परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं कि अच्छी लड़की मिले या न मिले, करोड़पति बनो या न बनो, अमेरिका जाने मिले या न मिले, परंतु मृत्यु तो जरूर मिलेगी। भक्तों, जो चीज जीवन में होने वाली है उसके लिए हम जरा भी नहीं सोचते हैं, और जीवन में कभी अमेरिका नहीं जाने वाले हैं उसके लिए रात दिन मेहनत करते रहते हैं। कभी करोड़पति नहीं बनने वाले हैं उसके लिए दिन रात मेहनत, और जो होने वाला है उसके लिए कभी भी मेहनत नहीं करते। जीवन का एक सनातन सत्य यदि कुछ है तो वह है मृत्यु, निश्चित आती। इसलिए एक भक्त बहुत सुंदर गाते हैं, लगन नु टाणु एक दिन आवशे जीव राजा, जानतारी जबरी जोड़ा से।
આખો ચારે તારી થર થર દૂધ છે અન પાણી ડાન
जो लग्न की विवाह की बात हो रही है ये कोई किसी पत्नी को लाने की बात नहीं है। यहां पर लग्न अर्थात मृत्यु
तारे वाला तारी पास नहीं आवे मुवा माटे નો પ્રેમ સાહુ ઉપલો બતાવશે રોદડા રડીને બતાવશે માર્ગ નો પ્રેમ સાહુ ઉપલો બતાવશે રડીને બતાવશે અંત વેળાએ તને પસ્તાવો થશે ત્યારે જીવનની નાવ તારી ડૂબશે રે અંત વેળાએ તને પસ્તાવો થશે જીવનની નાવ તારી ડૂબશે રે લગ્નનું ટાણું એક દી આવશે જીવરાજા તારી જબરી જોડાવશે રે
આવશે જીવરાજા જાન તારી જબરી જોડાવશે
પર જવાની તારી તૈયારી થશે પછી પ્રાણ પંખેરું તારું ઉડશે રે
ઉપર જવાની તારી તૈયારી થશે પ્રાણ પંખેરું તારું ઉડશે રે
અંગના ઘરેણા તારા ધરતીની ઉપર બોધાવશે રે
અંગના ઘરેણા તારા ઉતારી લેશે પછી ધરતીની ઉપર બોધાડશે રે
ચાર શ્રી ફળ તારી પાલખી એ માંડશે જીવનની નાવ તારી આવશે જીવરાજા જાન તારી જબરી જોડાવશે રે
લગ્નનું ટાણું એક દી આવશે જીવરાજા જાન તારી જબરી જોડાવશે
सगाने वाला नाहक नानी शासना खुशे रे
जोड़ता तारा सगाने वाला नाहक नानी शासना खुशे रे
पापा सुधीर ताने बड़ा भी आवसे सात साचा सदगुरु नु शरणु जे सोप से चारो तीरथ मानिया से
साचा सदगुरु शरणु जे सोप से चार तीरथ मानिया से रे
माधव नाम मा मस्त बनी
જીવરાજા જાન તારી જબરી જોડાવશે. નિશ્ચિત એક દિન મૃત્યુ આયેગી ઓર લેને વાલે યમરાજ કે દૂત યમદૂત હોંગે. મૃત્યુ એક સનાતન સત્ય હૈ ઓર વો કહીં ભી ઓર કભી ભી આ સકતી હૈ. ભક્તો હમ જીસ લોક મે રહ રહે હૈં इस लोक का नाम मृत्यु लोक है. वैसे तो इस ब्रह्मांड में बहुत लोक हैं, जन लोक, मर लोक, तप लोक, सिद्ध लोक, अतल, वितल, तलातल, पाताल इत्यादि. परंतु जिस लोक पर हम रह रहे हैं ये मृत्यु लोक है, क्योंकि यही एक ऐसा लोक है जहां पर मृत्यु कभी भी आ सकती है. किसी भी क्षण व्यक्ति मर सकता है. इसका ज्वलंत प्रमाण हमारे ऊपर है. किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है. इसलिए मृत्यु बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा कष्ट है. और प्रायः इस संसार में जब मृत्यु आती है तो मैंने प्रारंभ किया था कि हमारे भारतवर्ष में गरुड़ पुराण की कथा करते हैं. गरुड़ पुराण अर्थात एक बार कश्यप जी की पत्नी विनीता के एक पुत्र थे जिसका नाम था गरुड़. गरुड़ जी गरुड़ के रूप में थे और यह गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन थे. हम जैसे मारुति रखते हैं, स्कूटर रखते हैं, वैसे भगवान श्री विष्णु को कहीं जाना होता है तो गरुड़ के ऊपर सवार होकर जाते हैं. और गरुड़ का नाम आया है तो बता ही दू कि भगवान विष्णु का जो गरुड़ है वह दिव्य गरुड़ है, साधारण नहीं है. उनकी गति कितनी है भागवत में कहा गया है मन से भी अधिक. वे गरुड़ जी कितना तेज चलते हैं कहते हैं हमारा मन जितना तेज चलता है उससे अधिक वेग है उनका. जैसे हमारे मन में यहां पर बैठकर हम सोचे कि अमेरिका, न्यूयॉर्क, तो यह मन एक ही सेकेंड में भारत से अमेरिका चला गया. तो मन से भी तेज गति है भगवान के वाहन गरुड़ जी की. क्योंकि भगवान का संग किए हैं, भगवान के साथ रहते हैं, इसलिए गरुड़ जी भक्त है. एक समय की बात, गरुड़ जी भगवान विष्णु के पास आए और भगवान विष्णु के पास आकर प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप इस जगत के सभी लोगों को उपदेश करते हो परंतु आपने मुझे कभी उपदेश नहीं किया. आपने राम अवतार में अयोध्या वासियों को उपदेश दिया, कृष्ण बनकर अर्जुन के माध्यम से सबको भगवत गीता का ज्ञान दिया और भी अनेक अनेक अवतार लिए और लोगों को उपदेश दिया परंतु आपने मुझे कभी उपदेश नहीं दिया. गरुड़ जी अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं कि प्रभु प्रभु कृपया करके आप मुझे ज्ञान दीजिए। और संसार के लोग तो और कुछ समझना चाहे कि न चाहे, परंतु मैं आपसे सुनना चाहता हूं। गरुड़ उवाच, गरुड़ पुराण में लिखा गया है, और भगवान श्री विष्णु ने गरुड़ जी को जो भी कथा कही उस कथा को ही गरुड़ पुराण कहा जाता है। गरुड़ पुराण अर्थात भगवान विष्णु और गरुड़ जी का संवाद। तो भगवान विष्णु गरुड़ जी को बहुत सुंदर कथा कहे हैं। एक बार गरुड़ जी ने भगवान को पूछा, गरुड़ उवाच, क्या कहते हैं, आमुष्मि किं क्रियां सर्वा पद सुकृतिनां मम कर्तव्यासा यथा पुत्रे तथा च कथय प्रभो। हे प्रभो, हे भगवान विष्णु, कृपया करके आप मुझे यह बताइए कि इस मृत्यु लोक में, इस जगत में मृत्यु के बाद जीव की क्या गति होती है, मृत्यु के बाद जीव कहां जाता है, और उस जीव को बचाना हो तो क्या करना चाहिए। गरुड़ जी ने बहुत प्रश्न पूछे, तब भगवान बहुत सुंदर सुंदर उत्तर देना प्रारंभ किए। सबसे पहले गरुड़ पुराण में मृत्यु का वर्णन है। जीवन भर यदि कोई व्यक्ति पाप करता है और भगवान से कृष्ण की भक्ति नहीं करता है तो मृत्यु के समय उसे यमराज के दूत लेने के लिए आते हैं। और कैसे होते हैं, गरुड़ पुराण में वर्णन है, सपास हस्तान तीन दृष्टवा ऊर्ध्व रोमणम वक्र तुंड। तीन यमदूत आते हैं, उसके वक्र तुंड, उसके मुख टेढ़े होते हैं, काजल के पहाड़ के समान बड़े बड़े भयावह होते हैं नग्न अवस्था में, और उनके रोंगटे उनके बाल तांबा के तार के समान होते हैं, और सपास हस्तान उसके हाथ में पाश रस्सी होती है। और ऐसी अवस्था में तीन यमदूत एक जीव को लेने के लिए आते हैं। किस जीव को, जिस जीव ने जीवन भर पाप किया है। भजन करने वाले, भक्ति करने वाले को तो भगवान लेने के लिए आते हैं, तो पापी व्यक्ति को तीन यमदूत लेने के लिए आते हैं। और इस यमदूत को देखकर ही वह जीव छटपटाने लगता है, यद्यपि उसकी इंद्रियों का बल बिल्कुल निकल गया होता है। गीता में वर्णन है और शास्त्र में वर्णन है कि जीव में जो शक्ति है, जो चेतना है, सबसे पहले इंद्रियों से निकल जाती है, इसलिए आंख कान मुंह बोलना बंद हो जाता है, फिर बुद्धि से चेतना निकल जाती है, और अंत में मन में चेतना बचती है, और अंत में मन से चेतना निकल जाती है। तो शरीर से चेतना निकल गई, बुद्धि भी काम करना बंद कर दी, मन में चेतना होती है, और उस समय ये तीन यमदूत लेने के लिए आते हैं, और भगवान के द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान होती है कि वह मरने वाला व्यक्ति ही उस यमदूत का दर्शन करता है। और इतने भयावह यमदूत को देखकर वह डर जाता है, कांप जाता है, और छटपटाने लगता है। आप पूछोगे इसका प्रमाण क्या है, भक्तों आपने देखा होगा, जो बुजुर्ग है उनका अनुभव होगा कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अंत समय में पसीना छूटने लगता है, आंखें फट जाती है, और मल मूत्र इत्यादि निकल जाता है। क्यों, क्योंकि इतने भयावह यमदूत का दर्शन करते हैं और इतना डर लगता है, पेट में जो भी है वह सब कुछ बाहर निकल जाता है। भयानक भयानक यमदूत लेने के लिए आते हैं, और जबरदस्ती वह जीव वहां से निकलना नहीं चाहता है, परंतु जबरदस्ती हृदय के स्थान से उस जीव को बाहर निकाल दिया जाता है और जीव को बांधकर यह यमदूत वहां से लेकर चले जाते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ पुराण में गरुड़ जी को वर्णन करते हैं कि गरुड़ उस समय जीव को बहुत सबसे पहला कष्ट यह दिया जाता है कि जहां पर उसकी मृत्यु हुई है वहां से लेकर यमलोक तक, यमपुरी तक जहां पर यमराज रहते हैं, इस पृथ्वी से जहां पर यमराज रहते हैं यमलोक 99,000 योजन दूर है, 99,000 योजन दूर उस जीव को लेकर जाते हैं और कष्ट कितना, नंगे पांव दौड़ाते हुए चलाते हुए उस जीव को लेकर जाते हैं। और चलते चलते नहीं, भगवान विष्णु गरुड़ पुराण में कहते हैं कि केवल 3 मुहूर्त में, 3 मुहूर्त अर्थात 3, 4 और 4.5 घंटे में 99,000 योजन का रास्ता तय करना होता है। व्यक्ति दौड़ते दौड़ते मूर्छित हो जाता है, वह जीव पानी मांगता है, भोजन मांगता है, परंतु पानी मांगने पर उसे यमदूत के द्वारा डंडे मिलते हैं। अरे मूर्ख, इतना सुंदर मनुष्य देह मिला था, दुर्लभ मनुष्य देह मिला था भजन करने के लिए, भजन भक्ति नहीं किया और केवल भोग भोगतने में रह गया, अब तो यमराज जी तुझे सजा देंगे। मूर्छित होता जाता है, गिर जाता है, परंतु फिर भी जबरदस्ती 99,000 योजन उसे तय कराते हैं और 3 मुहूर्त में 4.5 घंटे में यहां से यमलोक में वो पहुंच जाते हैं। और जैसे ही जीव को उस यमपुरी में नरक लोक में खड़ा किया जाता है, ऑलरेडी वहां पर कई सारे लोग नरक में यातना भोगते रहते हैं और उसको देखकर, यातना मिली नहीं है, सजा मिली नहीं है, सजा मिलने से पहले ही सजा को देखकर व्यक्ति कांप जाता है, डर जाता है, अपने जीवन के सारे पाप याद करने लगता है कि इस जीवन में पाप नहीं किया होता तो अच्छा था, परंतु अब क्या करें। संसार की जेल में जाने वाले को सबको अफसोस होता है कि चोरी नहीं की होती तो अच्छा था, ये पुलिस के डंडे मिल रहे हैं, वहां पर जाकर सबको अफसोस होता है, परंतु सूरदास जी बहुत सुंदर कहते हैं, मन पछताई है अवसर बीते, अवसर बीत जाने के बाद, समय निकल जाने के बाद मन कितना भी पछताए कोई फायदा नहीं है। इसलिए जिस दिन से सत्संग होता है, भागवत और यह ज्ञान प्राप्त होता है, उस दिन से ही भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। 99,000 योजन 4.5 घंटे में तय कराते हैं और वहां पर नरक लोक की यातना को देखकर जीव कांप जाता है और वहां से भाग जाता है। आप देखो, यहां से वहां पहुंचने में 4.5 घंटा लगे, परंतु वहां पर इतना दुख और इतना दर्द हुआ कि व्यक्ति वहां से जब दौड़ता है, इतना दौड़ता है केवल 1 मुहूर्त में, 1.5 घंटे में 99,000 योजन का रास्ता तय करके जिस जगह पर उसकी मृत्यु हुई थी वहां पर वो वापस आ जाता है उस घर में, और जहां पर उसकी आसक्ति है वहां पर वो बैठ जाता है। भगवान विष्णु गरुड़ पुराण में गरुड़ जी को वर्णन करते हैं कि मृत्यु के बाद 12 दिन तक वह जीव, वह आत्मा उस घर के आजू बाजू में भटकती है और जब तक उसके पुत्र पौत्र पिंड दान न करे तब तक उसकी आत्मा भटकती रहती है। देखिए, पुत्र प्राप्त होना बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि जब तक पुत्र पिंड दान नहीं करते हैं तब तक उसकी गति नहीं होती है। भगवान तो यहां तक कहते हैं कि यदि किसी पुत्र ने अपने पिता के पीछे पिंड दान नहीं किया तो फिर वह प्रेत योनि में जाते हैं, भूत और पिशाच बनते हैं। तात्पर्य यह है, 12 दिन तक व्यक्ति यहां पर रहते हैं। गरुड़ जी इस संवाद को सुनकर कांप गए और कहने लगे, प्रभु ऐसी स्थिति से बचने के लिए जीव को क्या करना चाहिए। तब गरुड़ पुराण में बहुत सुंदर वर्णन है, भगवान विष्णु उवाच, भगवान विष्णु कहते हैं, संस्मरे क्षणया चैव विष्णु नाम शिवस्य च, હરેર નામ હરેત પાપમ નિણામ શ્રવણ ગોચરમ. ભક્તો પ્રાય મેને કહા કે મૃત્યુ કે બાદ ગરુડ પુરાણ સુનતે હૈ, પરંતુ વાસ્તવ મેં કોણ સમજતા હૈ ગરુડ પુરાણ કો? ગરુડ પુરાણ સુનને કે બાદ વહી કે વહી જીવન મેં પરિવર્તન નહીં આતા હૈ. ઇસલિયે મેં ગરુડ પુરાણ કે સાર કો કહ રહા હું, ક્યોંકિ ગરુડ પુરાણ કોઈ કુછ લોગ સુનેંગે 10-15 ઘંટે કે લિયે, લેકિન ઉસમે કુછ યાદ રહા નહીં રહા, પરંતુ ગરુડ પુરાણ કા સાર, ગરુડ પુરાણ કો અંત કરતે હુએ ભગવાન વિષ્ણુ કહેતે હૈ ગરુડજી કો કે એસી નરક લોક કી યાતના સે બચને કે લિયે સંસારે, ઇસ સંસાર મેં સુણુ સુનના ચાહિયે, ક્યા કહેતે હૈ વિષ્ણુર નામ. દેખિયે મેં મેરી બાત નહીં કર રહા હું, સબસે પહેલે સબકો યે જ્ઞાન હોના ચાહિયે કે યહાં પર જો પ્રભુજી આયે હૈ અપને મન ઓર અપની બુદ્ધિ કી બાત કરને નહીં આયે, યહાં પર શુદ્ધ શાસ્ત્ર કે સંસ્કૃત કે શ્લોકો કો કેવલ આપકો હિન્દી મેં સમજાયા જાયેગા, ઇસલિયે યે સભી બાત કો હમારે જીવન મેં ગ્રહણ કરના ચાહિયે. બિલકુલ ક્લિયર કર રહે હૈ, યદિ બચના હૈ એસી યાતના સે તો ઇસ સંસાર મેં રહેતે હુએ વિષ્ણુર નામ શુણોતી, ભગવાન વિષ્ણુ કે નામ કો સુનના ચાહિયે, ઓર સુનને કે સાથ સાથ હરેર નામ, હરિ કા નામ લેના ચાહિયે. ગરુડજીને પૂછા ઇસે ક્યા હોગા, તો કહેતે હરેત પાપમ, હરિ કા નામ લેને સે પાપમ હરેત, સમસ્ત પાપ ભગવાન હરિ હર લેંગે. તો મૃત્યુ આને સે પહેલે હી જીવ કો ચાહિયે કે ભગવાન કે નામ કો સુને, ભગવાન કી કથા કો સુને ઓર ભગવાન કે નામ કા ઉચ્ચારણ કરે. આગે ભગવાન કહેતે હૈ, રોગિણોંતિ કામા સદ્ય સોચ નિયમ ન બાંધવે, સ્મરણિયમ પવિત્ર મે નામ ધ્યેય મુહુર મુહુ. ભગવાન તો ઉપર સે બેઠ કર સબ કુછ દેખ રહે હૈ, કહેતે કે મૃત્યુ કે સમય મે પ્રાય સબ લોગ શોચંતી બાંધવ, અપને બંધુઓ કે બારે મે સોચતે હૈ. યે હમારે ભારત કા રિવાજ હૈ, આપ દેખેંગે કિસી કી મૃત્યુ કરીબ આ જાતી હૈ તો સબકો ફોન કર કરકે બુલાતે બસ અબ આ જાઈએ, ઓર સબ પરિવાર વાલે આતે વહ બિચારે અકેલે મર રહે હૈ, તો યદિ અકેલે હૈ તો હો સકતા હૈ કે ભગવાન કી શાયદ યાદ ભી આ જાય, લેકિન અબ સારે પરિવાર વાલે પૌત્ર પુત્ર ઇત્યાદિ આતે હૈ તો ઉસે દેખ કર યે મેરા હા પુત્ર હા પુત્રી કરતે કરતે પ્રાણ યદિ છૂટ ગયા તો ફિર યે જીવન બહોત બડા ધોકા બન કર રહ જાયેગા. इसलिए भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं सोच नियम न बांधवे, मृत्यु के समय में बंधुओं के बारे में मत सोचो. तो फिर किसके बारे में? कहते हैं स्मरणियम पवित्रम में नाम ध्येयम मुहु मुहु, मेरे नाम का स्मरण करो, मेरे नाम का कीर्तन करो. अब भगवान यह कह रहे हैं मेरे नाम का कीर्तन मत करो, क्यों? बिल्कुल क्लियर लिखा है स्मरणियम મેં નામ, મેરે નામ કા સ્મરણ કરો. ભગવાન કો ભી પતા હૈ કે સંસાર મેં મરને વાલા કહાં બોલ સકતા હૈ, જો મરને પડા હૈ વહ બોલ સકતા હૈ, વાણી તો ઉસકી બંધ હો જાતી, ઉસકા મન શરૂ હોતા હૈ, ઇસલિયે સ્મરણ કરને કે લિયે કહ રહે હૈ સ્મરણ કરો. લેકિન ભક્તો અંત સમય મેં ભગવાન કા નામ વહી સ્મરણ કર સકતે હૈ જિન્હોને જીવનભર સ્મરણ કિયા હૈ. इसलिए भगवान कुरुक्षेत्र में खड़े खड़े बार बार अर्जुन को कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्या जिमाम नमस्कुरु, अपने मन को मुझ में लगाओ, मन को मुझ में लगाओ. मन भगवान में लगना बहुत आवश्यक. फिर क्या करना चाहिए? ठीक है, भगवान का नाम मन में स्मरण करना चाहिए. प्राय कुछ लोग यह जानते हैं, परंतु कंफ्यूजन यहां पर है कि भगवान के कौन से नाम का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है. आप देखोगे अलग अलग धर्मों में, क्रिश्चियन धर्म में, ख्रिस्ती धर्म में एक ही भगवान है जीसस क्राइस्ट, मुसलमान धर्म में एक ही अल्लाह, परंतु हिंदू धर्म में हजारों भगवान है. सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारे हिंदू लोगों को है, क्योंकि जानते ही नहीं है कौन भगवान है और किसका नाम. और आज तो एक ऐसा फैशन निकला है कि रोज नए नए भगवान बन रहे हैं, ये बाबा भगवान है। तो गरुड़ जी ने पूछा कि प्रभु कलयुग में तो सब ऐसा ही चल रहा है कि कंफ्यूज है सब लोग कि कौन से भगवान का नाम लेना चाहिए। देखिए मैं नहीं कर रहा हूं, गरुड़ पुराण खोलकर देख लीजिए, गीता प्रेस तो बाजू में ही है आपका, तो कृपा है यहां पर बिल्कुल क्लियर। भगवान विष्णु गरुड़ पुराण में कहते हैं कि किस भगवान का कौन सा नाम लेना चाहिए। मत्स्य कूर्मो वराहश्च नरसिंहश्च वामन, मत्स्य का कूर्म का वराह नरसिंह वामन रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्ध कल्कि तथैव च। भगवान श्री कृष्ण के जितने भी अवतार है, भगवान कृष्ण के जितने भी नाम है, यह सब का नाम लेना चाहिए। एतानी दशनामानी स्मरतव्यानी सदा बुधे समी पे रोगोणी ब्रुया बांध वास्ते प्रकीर्तिता। गरुड़ जी देखिए अपने लिए नहीं हमारे लिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रभु प्रभु आप कह रहे हो कि मरणासन व्यक्ति को जो मरने वाला है उसे भगवान का नाम लेना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, परंतु यदि वह स्मरण भी न कर सके तो हो सकता है। तब भगवान कहते हैं कि वह मरने वाला यदि स्मरण न कर सके तो उनके बांधव उनके बंधुजन तो स्मरण कर सकते हैं। तो मरने पर जो पड़ा है उसके बंधु भी उसके कान में भगवान के इस नाम का उच्चारण करे तो उसका उद्धार हो सकता है। और भगवान देखिए क्या कहते हैं, समीप रोगिणो ब्रुयात, मृत्यु समय पर जो व्यक्ति भगवान का नाम उस व्यक्ति के लिए लेता है, यावद वास्ते प्रकीर्तिता, वही वास्तव में बंधु है, वही वास्तव में मित्र है, सच्चा दोस्त है, बाकी सब शत्रु है। और आगे भगवान कहते हैं, कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते तस्य भस्मी भवत्यासु महापातक कोटय। गरुड़ जी ने मान लीजिए संशय किया कि प्रभु क्या आपका नाम लेने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि कृष्ण इति, कृष्ण नाम लेने से करोड़ों करोड़ों पापों से व्यक्ति मुक्त हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रभु कोई दृष्टांत है, भगवान विष्णु गरुड़ जी को दृष्टांत देते हैं कि म्रियमाणो हरेर नाम गुणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्य गद्धाम किम पुनः श्रद्धया गुणान। भगवान का एक बार भी नाम लेने से करोड़ों पाप से व्यक्ति मुक्त हो सकता है, उसका ज्वलंत प्रमाण है अजामिल। कान्य कुब्ज में रहने वाला द्विज कश्चित दासीर पति अजामिल नामना नष्ट सदाचारो दासिया संसर्ग दूषित। सभी पाप करने वाला, इस दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं था जो अजामिल ने नहीं किया था। इस संसार का बहुत बड़ा पापी अंत समय में भगवान का नाम लेकर भगवान के धाम को प्राप्त हो गया, समस्त पापों से मुक्त हो गया, सबसे बड़ा प्रमाण है। हरि हरति पापानी दुष्ट चिरेति पिस्मृत अनिच्छयापी संस्पृष्टो दहत्य वही पावक। मान लीजिए गरुड़ जी और एक प्रश्न पूछे, प्रभु हो सकता है कि मरने वाला व्यक्ति प्रेम से भगवान का नाम न ले, जबरदस्ती नाम ले ले। होता है ना, कुछ लोग जबरदस्ती किसी को नाम बुलवाना पड़ता है। माताएं अपनी पति को कहती हैं कि अब माला जपो, भगवान का कुछ नाम लो। कुछ पति पत्नी को कहते हैं कि भाई भगवान का नाम जपो। तो कुछ लोग जबरदस्ती भगवान का नाम जपते हैं और कुछ लोग मान लीजिए किसी को डांटते हुए भी भगवान का नाम लेते हैं कि रामू किसी काम का नहीं है, उसमें राम नाम आ गया। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि किसी भी प्रकार अवहेलना करते हुए प्रेम से या बिना प्रेम से यदि भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया जाए तो हजारों हजारों पापों से वह मुक्त हो सकता है। कैसे, दृष्टांत है आपके पास कोई? भगवान कहते हैं हां, दृष्टांत है। मान लीजिए एक आग जल रही है और उस आग में आपको यदि पता नहीं है कि वहां आग जल रही है, फिर भी आप हाथ डाल दो तो वह जलेगा, और सोच समझ कर भी उसमें हाथ डालो फिर भी जलेगा। नहीं पता है फिर भी हाथ जलेगा और पता है फिर भी हाथ जलेगा, प्रेम से आग में हाथ डालो फिर भी जलेगा और गाली देकर आग में हाथ डालो फिर भी जलेगा। किसी भी प्रकार यदि आग में हाथ डालते हो तो वो जलता ही है, उसी प्रकार किसी भी प्रकार आप यदि कृष्ण का नाम लो तो वो नरक से मुक्त करवाता ही है। हरे कृष्णा भगवान यहां तक गरुड़ पुराण में गरुड़ जी को कहते हैं कि किं करेभ्यो यमो प्राभान यद्वम नास्तिकम जनम। हे गरुड़ जी, मैं तुम्हें यमराज की एक बात सुनाता हूं। यमराज जी ने अपने दूत यमदूतों को कहकर रखा है कि नास्तिकम जनम, इस संसार में जो नास्तिक है, नास्तिक शब्द तो हम बहुत बार बोलते हैं परंतु इसका अर्थ क्या होता है? नास्ति, इसकी संधि विच्छेद यदि किया जाए तो होता है न अस्ति, न अस्ति इति नास्तिक। तो अस्ति का अर्थ होता है और न का अर्थ होता है नहीं, नास्ति का अर्थ होता है नहीं है। इस संसार में जो लोग सोचते हैं कि भगवान नहीं है, इस संसार में जो लोग सोचते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, ऐसे लोगों को नास्तिक कहा जाता है। तो गरुड़ पुराण में गरुड़ जी भगवान गरुड़ जी को कहते हैं कि जो नास्तिक है उसी लोगों, ऐसे लोगों को लेने के लिए यमदूत जाते हैं। और जो नैवा यत बोधुता हरि नाम स्मरण नरम, और यमराज जी ने कहा है कि हरि के नाम का जो स्मरण करता है, जो कीर्तन करता है, जो और जो भगवान की कथा सुनते हैं, उसे कभी भी लेने मत जाना। तब फिर से विष्णु गरुड़ जी ने भगवान विष्णु को पूछा कि प्रभु आप बारंबार कह रहे हो कि भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, तो आप बिल्कुल क्लियर करके कह दो कि कौन से भगवान का नाम लेना चाहिए, कौन से अवतार का, एक किस कोई भी एक व्यक्ति चीज बताओ। तब गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं यदि नरक से बचना चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, तो अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, ये सब भगवान श्री कृष्ण के नाम है, कृष्ण के जितने भी नाम है ये सभी नामों का उच्चारण करना चाहिए। भगवान विष्णु गाते हुए ये छंद में गरुड़ जी को कहते हैं, छंद में गाते हुए कहते हैं, जब यह कहना हुआ तो भगवान गाने लगे, क्या गाने लगे? अच्युतम केशवम राम नारायणम अच्युतम अच्युतम केशवम राम नारायणम
अच्युतम केशवम राम नारायणम
कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम
कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम।
ये हम जो गा रहे हैं ये गरुड़ पुराण का श्लोक है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि नाम यदि लेना है तो कौन सा नाम लेना चाहिए?
अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम
अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम
अच्युतम केशवम राम नारायणम
अच्युतम केशवम राम नारायणम
कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम
कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम
श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभम
श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभम
श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभम
श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभम
जानकी नायकम रामचंद्रम भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे
जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे
कमलनयनं वासुदेव विष्णो
कमलनयनं वासुदेव विष्णो
कमलनयनं वासुदेव विष्णो धरणीधराच्युत शङ्ख चक्रपाणे
धरणीधराच्युत शङ्ख चक्रपाणे
धरणीधराच्युत शङ्ख चक्रपाणे कमलनयनं वासुदेव धरणीधराच्युत शङ्ख चक्रपाणे 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
अभी ही आ जाए भगवान कह रहे हैं भगवान का नाम लेना चाहिए सब लोग प्रेम से गाएंगे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हरे राम हरे
अपराध के डंडे से बचने के लिए सभी लोग गाइए। अब दो ऑप्शन, दो लाइफलाइन है, या तो यहाँ पर वाणी को कष्ट देना है भगवान का नाम लेकर, या तो नरक में डंडे खाना है। क्या करना चाहते हैं?
हरे कृष्णा
प्रेम से ताली बजाकर,
गरुड़ पुराण इसलिए बोलना पड़ता है। कुछ लोग सोचेंगे कृष्ण के भक्त हैं इसलिए कृष्ण की बात कर रहे हैं। गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास, ऐसे दास नहीं है हम। हम यहां पर आपको सत्य से अवगत कराने आए। तो भगवान श्री विष्णु गरुड़ पुराण में गरुड़ जी से कहते हैं कि इस प्रकार कृष्ण का नाम लेने से भगवान के धाम में जा सकते हैं और नरक में जाने से बच सकते हैं। तब गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु आपने यह बात उन लोगों के लिए बताई जो लोग जीवित हैं, मरणासन स्थिति में भले हैं परंतु जीवित हैं, परंतु प्रभु अज्ञान में किसी के अकस्मात में किसी की मृत्यु हो गई और फिर जिसकी मृत्यु हो गई है उन्हें सदगति प्राप्त कराने के लिए उनके पीछे उनके स्वजन कुछ करके उनको परम गति दे सकते हैं। समझ रहे हैं मेरा प्रश्न? गरुड़ जी वास्तव में हम लोग के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने यह उपाय उन लोगों के लिए बताया जिसकी मृत्यु नहीं हुई है, परंतु जिसकी मृत्यु हो चुकी है उस बेचारे ने भजन भक्ति नहीं की है, तो ऐसे लोगों को भगवान के धाम में पहुंचाने के लिए सदगति प्राप्त कराने के लिए ऐसा कोई उपाय है जिसे मरे हुए लोगों को हम सदगति दे सकें? तब भगवान श्री विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं जी गरुड़ जी ऐसा एक उपाय जरूर है। तब गरुड़ जी कहते हैं जल्दी कहो, क्योंकि इस संसार के कुछ लोग अकस्मात में एक्सीडेंट में मृत्यु लोक में कभी भी मर जाते हैं, इसलिए उनके पीछे रहने वाले लोग क्या करें जिससे उसकी सदगति हो। तब भगवान ऐलान करते हैं गरुड़ पुराण में, सत शास्त्र श्रवणम विष्णु पूजा सज्जन संगति प्रेतयो निविनाशाय भवन्ति इति मया श्रुतम्। समझ में आ गया? आइए इसका अनुवाद कर दूं। सत शास्त्रणम श्रवणम विष्णु, भगवान श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण की लीला का जो सत शास्त्र है, सत का अर्थ होता है शुद्ध शास्त्र, अर्थात ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। कहते हैं सत शास्त्र श्रवणम विष्णु, यदि कोई श्रीमद् भागवतम का श्रवण करे, पूजा सज्जन संगति और उसी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करे और इसी के साथ साथ सत संगति अर्थात सत्संग करे। देखिए तीन चीज कही भगवान ने, जिसकी मृत्यु हो गई है उसे परम गति देने के लिए उनके स्वजन को क्या करना चाहिए। उत्तर पक्ष में भगवान यह कहते हैं कि जिसकी मृत्यु हो गई वह कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, और कितना भी बड़ा पापी की बात दूर है, प्रेत योनि, वह प्रेत योनि में भी क्यों न गया हो, परंतु यदि उनके स्वजन श्रीमद् भागवत का यदि सप्ताह में श्रवण करें, भगवान विष्णु की आरती करें और सत्संग करें, यह तीन कार्य करने से प्रेत योनि विनाशाय, वो प्रेत योनि से भी मुक्त हो सकता है, तो परम गति प्राप्त हो उसमें कौन सा संशय है। मृत्यु द्वार से परम गति तक पहुंचाने वाला एकमात्र साधन है वो है भागवत कथा का श्रवण करना। श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण करने से हम हमारे जितने भी स्वजन है जिनका निधन हो गया है उन्हें हम परम गति प्राप्त करा सकते हैं। इसलिए वास्तव में यहां पर रहने वाले लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिन लोगों के स्वजनों की मृत्यु हो गई है उनकी बुद्धि में बहुत सुंदर यह विचार आया कि उनके पीछे हम भागवत सप्ताह रखें। आज कौन ऐसा सोचता है बताइए, लाखों करोड़ लोग इस दुनिया में मर रहे हैं, परंतु यह विचार आना भी बहुत बड़ी सुकृति का कार्य है। जब करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य होते हैं तब भागवत सुनने का विचार आता है। वास्तव में कुछ लोग हमारे इस्कॉन से एक साल से जुड़े हुए हैं और भगवान के भक्तों के संग में हैं, इसलिए सुकृति के उदय के कारण उन लोगों के मन में यह भागवत सप्ताह करने का विचार आया है। निश्चित ये भागवत सप्ताह का श्रवण करने से मरे हुए लोगों को हम परम गति प्रदान कर सकते हैं। परंतु फिर भी लोगों का प्रश्न बनेगा कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो मरने के बाद भागवत कथा का सप्ताह का आयोजन किया गया और फिर वह परम गति को प्राप्त हुआ, कोई दृष्टांत है, कोई उदाहरण है। तब श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भगवान वेद व्यास जी एक कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे और उस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर रह रहे थे। वैसे तो सभी ओर से सुखी थे, धनी थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, वेदों के मंत्र जानते थे और बहुत सुंदर पत्नी भी थी। और उस आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की पत्नी का नाम था धुंधली। सभी ओर से सुखी थे, बहुत अच्छी तरह से रह रहे थे। उनके जीवन में एक दुख था और वह दुख क्या था, कहते हैं कि विवाह हुए बहुत साल बीत गए थे परंतु पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था। भक्तों, विवाहित जीवन में पुत्र न होना यह बहुत बड़ा दुख है। जब व्यक्ति बहुत बहुत पाप करता है तब उसे संतान प्राप्ति नहीं होती है। संतान प्राप्ति ये गृहस्थ जीवन का सौभाग्य है, सभी लोगों को चाहिए कि संतान प्राप्ति हो। परंतु आत्मदेव को एक भी संतान नहीं, इसलिए प्राय दुखी रहते थे। एक समय की बात, वो इतना दुखी हुए, इतना दुखी हुए कि घर छोड़कर आत्महत्या करने के लिए निकल पड़े। वास्तव में ये योग्य रास्ता नहीं है। यदि जीवन में दुख आए, जीवन में दर्द हो, तो आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। ये आत्मदेव नाम के ब्राह्मण आत्महत्या करने चले गए। सीखना चाहिए राजर्षि दशरथ से, पुत्र नहीं है, निसंतान का दुख है, तो क्या करना चाहिए। कहते हैं अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ,
अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ,
अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ,
अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ,
वेद अवधपुरी में अयोध्या में एक राजा रहते थे जिसका नाम था दशरथ। दशरथ का अर्थ होता है जिसका रथ दसों दिशा में चलता था, उसे दशरथ कहा जाता है। उसका परिचय देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं,
धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी,
धर्म
सभी गुणों का खजाना था। समस्त गुण राजर्षि दशरथ में थे, सभी प्रकार के गुण थे। और इतना ही नहीं, धर्म धुरंधर, धर्म में धुरंधर थे। उनके लिए कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राजर्षि दशरथ के मुख से एक बार निकल जाता तो वह होकर रहता। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं,
धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी,
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 भक्ति सहित
भक्त थे, भक्ति में डिगने वाले नहीं थे। अब आगे उनके जीवन में एक दुखमय घटना हुई, क्या थी।
एक बार भूपति मन मानी,
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 भये गला
भूपति मन माही। एक बार राजा मन ही मन सोच रहे थे, मन में दुख हुआ, ग्लानी हुई कि जीवन बीत गया, जीवन का इतना लंबा समय बीत गया, परंतु एक भी सुत, एक भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। राजा दशरथ बहुत दुखी हुए, अब क्या करूं। आत्महत्या करने नहीं गए, कहां गए। गोस्वामी जी कहते हैं,
गुरु गृह गए तुरंत मही,
गुरु गृह गए तुरंत
गुरु के घर पर, गुरु के गृह में गए। भक्तों, शास्त्र हमें सिखाता है, आदेश देता है, जीवन में जब दुख आए, एकांत सताए, जब जीवन में दर्द हो, जीवन विचलित हो जाए, तब इस संसार में किसी के पास न जाकर गुरु के पास जाना चाहिए। राजा दशरथ अपनी प्रजा के पास नहीं गए, मंत्री के पास नहीं गए, अपनी तीन रानी के पास नहीं गए, गुरु के गृह में गए, गुरु के घर गए।
गुरु गृह गए तुरंत महिपाला,
गुरु गृह गए तुरंत महिपाला,
गुरु गृह गए तुरंत महिपाला,
गुरु गृह गए
गुरु
जाना चाहिए, क्योंकि गुरु सत्य मार्ग दिखाते हैं। गुरु का अर्थ ही होता है गुरु शब्द अंधकारोस्ति, रू शब्द तत् निरोधक। गुरु उसे कहते हैं जो अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के उजाले में ले जाते। गुरु के पास जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि गुरु को कोई प्रलोभन नहीं होता। इसलिए राजा दशरथ गुरु को प्रार्थना कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और विनय कर रहे हैं कि प्रभु, क्या मुझे कभी पुत्र नहीं होंगे? क्या मैं निपुत्र वाला रहूंगा? क्या कभी मेरे आंगन में पुत्र, मेरे जीवन में पुत्र सुख नहीं लिखा है? तब वशिष्ठ जी राजर्षि दशरथ को कहते हैं कि दशरथ, डरो मत, तुम्हारे जीवन में पुत्र सुख लिखा है, और एक नहीं, तुम्हारे जीवन में चार चार पुत्र लिखा है।
धरहूं धीर
होई सुत चारी,
धरहूं धीर होई सुत चारी,
धरहूं धीर होई सुत चारी।
राजन, एक नहीं चार चार पुत्र होंगे, और साधारण नहीं, धर्म का पालन करने वाले, धर्म की स्थापना करने वाले और रघुकुल का ध्वज फरकाने वाले, ऐसे
चाहत मुनि संता कमला कंता बलबल संता बलवंता, क्षत्रिय गज धारण धर्म सुजारण मधवारण, कई कई के कारण नाद विवारण असुर विदारण मधवारण, भव सिंधु चारण पार कारण भगवान।
धर्म की स्थापना करने वाले, असुरों को विनाश करने वाले, पूरे तीनों ब्रह्मांड में डंका बजाने वाले पुत्र उत्पन्न होंगे। परंतु राजन, इसके लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाना होगा, क्योंकि पुत्रेष्टि यज्ञ वही करा सकता है जिन्होंने किसी से दक्षिणा नहीं ली। इसलिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया। राजा ने कहा, जिसको बुलाना है बुला लेता। तब अभी तो राम कथा प्रारंभ हो गई। वास्तव में हम लोग आत्मदेव की कथा कर रहे थे, परंतु वास्तव में भगवान का गुण इतना महान है। कहते हैं आत्म रामश्च मुनियो, जो आत्म राम ब्रह्म समाधि में भी लीन हो गए हैं, भगवान का गुण यदि गाया जाए तो उसकी समाधि टूट जाती है, आगे सुखदेव गोस्वामी की टूट जाएगी। वास्तव में हम केवल राजा दशरथ के लिए ही कहना चाहते थे, परंतु मन नहीं भर रहा था, इसलिए राम अवतार की कथा आ गई। आधा घंटा यदि आप रुके होते तो राम का जन्म भी हो गया होता। वास्तव में ये हम कथाकारों के लिए बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है। वैसे तो राम का जन्म साल में एक बार होता है, परंतु भगवान ने हमें सौभाग्य दिया है, जब चाहे तब भगवान का जन्म करा सकते हैं। खैर अभी भगवान को केवल ऊपर बैठकर सुनने दीजिए। हमारा तात्पर्य यह था कि आत्मदेव नाम का ब्राह्मण पुत्र नहीं था इसलिए आत्महत्या करने गया, परंतु राजा दशरथ पुत्र नहीं थे इसलिए गुरु के पास गए और गुरु की कृपा से उन्हें एक नहीं चार पुत्र हुए, रघुकुल के ध्वज स्वरूप, और उनमें भी ज्येष्ठ सबसे ज्येष्ठ थे रामचंद्र। राम बोलते ही हमारा हृदय भर जाता है। तो बहुत सुंदर कथा है भगवान श्री रामचंद्र की, परंतु आप इतना ही समझिए कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण आत्महत्या करने के लिए जंगल में गए और जंगल में जाकर जैसे ही नदी में गिरकर आत्महत्या करने ही वाले थे, तुरंत उस आत्मदेव ब्राह्मण को एक सन्यासी ने देख लिया, बहुत तेजस्वी सन्यासी, तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, ये क्या कर रहे हो? आत्मदेव ने कहा मैं आत्महत्या कर रहा हूं। तब उस सन्यासी ने पूछा क्यों आत्महत्या कर रहे हो, मुझे बताओ तो सही। तब आत्मदेव अपने जीवन की व्यथा और कथा कहते हैं कि इतना समय बीत गया परंतु पुत्र नहीं हुआ, संतान बिगर का हूं मैं, और मेरे घर पे पुत्र न होने के कारण लोग मुझे देखकर अपशुकन मानते हैं, मैं इतना अपवित्र हूं, मेरे घर में कितना भी सुंदर बीज लाऊं और रोपूं तो वो उगते नहीं है, मेरे घर में जो वृक्ष है उसमें फल नहीं आते हैं, यहां तक कि हमारे घर में रहने वाली गाय भी बछड़ा को जन्म नहीं देती है, वह भी प्रसव नहीं कर सकती, और सुबह सुबह कोई हमें देख ले तो अपना मुंह फेर लेते हैं, जीवन में सुख नहीं है, पुत्र सुख नहीं है। वास्तव में जीवन गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा सुख माना गया है कि पुत्र के साथ तोतली बोली में बात करना, यह सुख न होने के कारण आत्मदेव मर रहे थे। तब आत्मदेव उस ब्राह्मण के चरण में गिर गए, चरण पकड़कर कहने लगे प्रभु क्या मेरे जीवन में पुत्र नहीं लिखे हैं? तब उस ब्राह्मण ने, क्योंकि तेजस्वी सन्यासी थे इसलिए ब्राह्मण को कहा कि आत्मदेव तुम दुखी मत हो, तुम मर रहे हो, तुम्हारे जीवन में पुत्र संतान तो नहीं है परंतु आने वाले 7 जन्म के लिए तुम्हें पुत्र नहीं होंगे, कितनी बार आत्महत्या करोगे, सीधा सीधा घर पर चले जाओ। तब क्योंकि वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण में बुद्धि बहुत होती है, जन्मना शूद्र जायते संस्कारात् द्विज उच्चते वेद पाठात् भवेत् विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ब्राह्मण उसे कहते हैं जिसमें बुद्धि हो, ब्राह्मण भगवान के मस्तक है, मस्तिष्क है, और बुद्धि यहां मस्तिष्क में होती है। तो ब्राह्मण में बुद्धि थी, ब्राह्मण ने सोचा कि यह सन्यासी यदि मेरे 7 जन्म के बारे में कह सकता है तो यह मुझे पुत्र भी दे सकता है। तुरंत सन्यासी के चरण पकड़ ली और कहने लगे कि आप ही मुझे पुत्र दीजिए, आपकी कृपा से मुझे पुत्र हो ही सकता है। सन्यासी ने कहा अरे छोड़ो छोड़ो मुझे। ब्राह्मण ने कहा नहीं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे पुत्र हो। तब सन्यासी ने कहा ठीक है, यदि आपकी कामना ही है पुत्र प्राप्त करने की तो लो मैं तुम्हें एक फल देता हूं, यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, 9 महीने के बाद पुत्र का जन्म होगा। आत्मदेव प्रसन्न हुए, फल को लेकर अपने घर आए और अपने घर आकर अपनी पत्नी धुंधली को वह फल दे दिए कि इसे खा लेना, 9 महीने के बाद पुत्र होगा। और उन दिनों धुंधली की एक बहन थी, उनके घर पर कुछ दिन के लिए आई थी। आत्मदेव वह फल देकर चले गए। धुंधली अपने हाथ में वह फल लेकर सोच रही है कि यदि यह फल मैंने खा लिया, तो मेरा गर्भ बढ़ेगा और इतना बड़ा पेट लेकर कहां पर घूमूंगी, और यदि मैं मेरे मायके चली गई तो मेरी जेठानी इत्यादि जो है मेरा सारा धन ले लेगी, और यदि वह पुत्र सुखदेव गोस्वामी की तरह 16 साल तक पेट से बाहर ही नहीं आया तो। इस प्रकार से वह महिला व स्त्री सोचने लगी। वास्तव में यह आसुरी स्वभाव है। स्त्री के हृदय में ममता होनी चाहिए, वात्सल्य भाव होना चाहिए, परंतु धुंधली महाखल थी, इसलिए इस प्रकार का विचार था, आसुरी स्वभाव था। सोचा कि मुझे यह फल नहीं खाना है। बहुत टेंशन में थी, चिंतित थी। उसी समय उनकी बहन आई और कहने लगी, बहन क्यों दुखी हो, क्या हुआ है? तब कहा कि मेरे पति ने यह फल दिया है, 9 महीने के बाद बालक होगा, फिर कौन उसे रखेगा। तो उसकी बहन ने कहा, क्यों टेंशन लेती हो, मेरे पेट में भी गर्भ है, बालक है। एक काम करो, तुम इस फल को फेंक दो और मुझे जब बालक होगा तो रातों रात किसी को पता न चले वैसे मैं तुम्हें दे दूंगी, और तुम्हारे पति को कह देना कि ये हमारा बालक है। धुंधली बहुत खुश हुई और कहा, ठीक है, ये बालक तो मैं ले लूंगी, परंतु ये फल का क्या करूं। कहा कि ये फल में विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसे फल तो बहुत लोग देते हैं। एक काम करो, इसका एक्सपीरियंस करने के लिए अपनी गाय को खिला दो यह फल। तो वह फल गाय को खिला दिया और बिल्कुल 9 महीने के बाद धुंधली की बहन के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ। और 9 महीने तक यहां भी इसका भी पेट बड़ा था, परंतु आत्मदेव को क्या पता वह पेट बड़ा हुआ है या तकिया रखकर बैठी है। आत्मदेव तो बेचारे अनजान थे। 9 महीने के बाद रातों रात वहां से उस बालक को पहुंचाया गया और फिर अनाउंसमेंट किया गया कि धुंधली के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ है। आत्मदेव नाचने लगे, खुश हो गए, पेड़े बांटे, स्वस्ति वाचन किए और बहुत बहुत दान दिए। और धुंधली से यह पुत्र उत्पन्न हुआ, असल धुंधली का नहीं था परंतु धुंधली का माना गया, इसलिए उस पुत्र का नाम हुआ धुंधुकारी। और उसी के साथ साथ वे गाय के भी 9 महीने पूर्ण हुए तो दूसरे दिन गाय के गर्भ से भी एक बालक, मनुष्य बालक का जन्म हुआ। आत्मदेव तो नाचने लगे, आज तक मेरी पत्नी के गर्भ से बालक उत्पन्न नहीं होते थे, अब तो गाय भी मनुष्य बच्चे देने लगी। जीवन की स्थिति ही बदल गई। तो गाय के गर्भ से एक मनुष्य बालक का जन्म, परंतु उसके कान गाय के समान थे, लंबे। कान को संस्कृत में कर्ण कहा जाता है। गाय के समान कान होने के कारण उस बालक का नाम हुआ गोकर्ण। गो माने गाय, कर्ण माने कान। तब एक घर में एक छत के नीचे 2 बालक बढ़ रहे हैं, एक धुंधुकारी और एक गोकर्ण। वेद व्यास जी लिखते हैं, क्योंकि धुंधुकारी को किसी भी प्रकार का संस्कार नहीं था और जन्म से ही बालक अवस्था से ही गलत संगति हो गई थी, इसलिए धुंधुकारी महाखल हुआ। सभी प्रकार का पाप करने वाला, पाप गिनाए गए हैं। अब कितना गिनाऊं आपको, हमारा समय तो हो चुका है, परंतु संक्षिप्त में समझिए कि धुंधुकारी रास्ते से चलता, कोई बालक को देखता तो बालक को उठाकर कुएं में फेंक देता। उसके बालक के घर वाले ढूंढने लगते, कहां गया, कुएं से मिलता। किसी के घर पर चोरी करता, कुत्तों को घर पे लेकर आता। इस प्रकार से धुंधुकारी बहुत बहुत पापों में जुट गए। और गोकर्ण, क्योंकि साधु के द्वारा संस्कार किया गया था, इसलिए गोकर्ण महाभागवत, भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त हुआ। जन्म से ही स्वाभाविक जन्मतः भागवत और भगवत गीता रूपी शास्त्र में मति थी। धीरे 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 बड़े हुए, धुंधुकारी का इतना आतंक था, यह आतंक देखकर गोकर्ण घर छोड़कर यात्रा करने के लिए निकल गए। और यहां पर धुंधुकारी इतने गलत कार्यों में लग गया, शराब पीने में, मांस खाने में लग गया, उसकी मति फिर गई और अपने पिता से सारा धन ले लेकर सफाया कर दिया। पुत्र यदि अच्छे हो तो बहुत अच्छा है, और यदि अच्छे पुत्र न हो तो यदि पिता थोड़े बहुत पुण्य करके स्वर्ग में गए हो परंतु उनकी संपत्ति पुत्र गलत मार्ग में यूज करे तो स्वर्ग में गए हुए पिता को नरक में भेज सकते हैं, परंतु गोकर्ण जैसे यदि पुत्र हो जाए तो नरक में जाने वाले पिता को धाम में भेज सकते हैं। आगे आएगी कथा। तो धुंधुकारी बहुत बड़ा खल था, पापी था, और धीरे धीरे करके पिता की सारी संपत्ति समाप्त कर दी। पिताजी बहुत दुखी थे। अब देखिए, आत्मदेव ब्राह्मण जब पुत्र नहीं था तब जितना दुखी थे, उसे करोड़ों गुना पुत्र होने के बाद दुखी हुए। इस संसार में पुत्र है वह भी दुख है, नहीं वह भी दुख है, सब दुख ही दुख है। दुखालयम अशाश्वतम। दुखी हुए। एक दिन की बात, गोकर्ण ने अपने पिता आत्मदेव को उपदेश दिया कि पिताजी अपने पुत्र में इतना आसक्त मत रहो, जीवन मिला है भजन करने के लिए, कर्म अनुसार जो पुत्र मिले हैं जैसे भी हैं, परंतु आप तो भगवान का भजन करो। अपने पुत्र का उपदेश सुनकर, गोकर्ण का उपदेश सुनकर आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में चले गए और जंगल में जाकर भागवत कथा पढ़ते पढ़ते भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। यहां पर अब केवल धुंधुकारी और उसकी मां रह रही थी। धुंधुकारी इतना पापी हुआ, कि 5 वेश्या को अपने घर पर लेकर आया। अब वेश्या का पति कोई होता नहीं है, वेश्या का पति तो धन होता है, जब तक धन किसी के पास है तब तक वह रहती है, परंतु ये उसको अपनी पत्नी समझता था। अब जिसका पुत्र अपने घर पर 5 वेश्या को लेकर आए, उस मां के ऊपर क्या बीतती होगी कल्पना कीजिए। वह मां यह दुख, यह बेइज्जती सह नहीं सकी और एक दिन एक रात को कुएं में जाकर आत्महत्या कर ली। और अब केवल घर में गोकर्ण, क्षमा कीजिए, धुंधुकारी और 5 वेश्या रह रही थी। और अब तो वेश्या तो आखिर वेश्या है, क्योंकि उसे धन चाहिए, लिपस्टिक चाहिए, साड़ी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, इसलिए अब धुंधुकारी को चोरी करनी पड़ी। और एक दिन धुंधुकारी ने राजा के घर पर चोरी की। धुंधुकारी ने सोचा क्या छोटी मोटी चोरी करना, एक ऐसा बड़ा हाथ मार लेता हूं सारा जीवन बैठकर खाऊंगा। राजा के घर पर चोरी की, बहुत सारा धन और गहना लेकर घर पर आया और चोरी करके बेचारा बहुत दिनों से प्लान मार रहा था। घर पर आया गहना और सब लेकर, वेश्याओं ने देखा तो ये बेचारा फ्रेश होने के लिए स्नान करने गया। 5 वेश्याओं ने मीटिंग की, अरे बाप रे बाप, ये राजा के घर से चोरी करके लाया है, यदि राजा के सिपाही ने इसे पकड़ लिया तो चोरी करना तो पाप है ही, चोरी का धन खाना यह भी पाप है, हमें भी जेल में डाल देंगे। एक तीर 2 निशान, इसको यदि हम मार देंगे तो राजा से भी बच जाएंगे और यह सारा धन हम बांट लेंगे। उसी रात को जैसे ही धुंधुकारी आया और रात के 2 बजे गरम गरम कोयले धुंधुकारी के 5 वेश्या ने मिलकर धुंधुकारी के हाथ और पांव बांध दिए और गरम गरम कोयले उस धुंधुकारी के मुंह में डालकर और गला दबाकर मार डाला। मैं कोई काल्पनिक घटना नहीं कह रहा हूं, भागवत की सत्य घटना कह रहा हूं। और ये हमारे जीवन से थोड़ी बहुत जुड़ी हुई है, इसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मार डाला और मारकर संसार के लोगों को पता न चले इसलिए उसी ही घर पर एक बहुत बड़ा खड्डा किया और उस खड्डे में उसे गाड़ दिया। और सुबह उठकर 5 वेश्या रोने लगी कि हमारे पतिदेव घर पर नहीं आए, घर पर नहीं आए, और 5 वहां से भाग गए। क्योंकि धुंधुकारी की कमौत हुई थी। अब मैं आपको एक छोटे से सिद्धांत की बात कर दूं। ब्रह्मा जी के द्वारा जब इस संसार में किसी का जन्म होता है तो विधाता के द्वारा उम्र निश्चित की जाती कि यह व्यक्ति इतने अरब, इतने करोड़, इतने लाख, इतने सो और इतना सांस तक जिएगा, यहां तक फिक्स होता है। तो मान लीजिए किसी के का उम्र ब्रह्मा जी ने 90 साल का फिक्स किया है और कोई व्यक्ति अकस्मात में या कमोत में 60 वर्ष में मर जाए तो 30 वर्ष तक उसे प्रेत योनि में भोगतना होगा, प्रेत योनि में रहना होगा। कमोत हुई थी इसलिए धुंधुकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। और यह बात तीर्थाटन करने वाले, यात्रा करने वाले उनके भाई गोकर्ण को पता चला, क्योंकि भक्त था इसलिए भक्त का एक स्वभाव होता है, ऐसा नहीं है धुंधुकारी खराब है तो उसके लिए अनिष्ट सोचना कि अच्छा हुआ मर गया, नहीं। भक्त का स्वभाव होता है सर्वे भवन्तु सुखी नाम, सब लोग सुखी हो, सब लोग निरोग हो, सर्वे संतु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। भक्त का स्वभाव होता है सब लोग सुखी रहे। वहां गोकर्ण जी ने धुंधुकारी के लिए गया में बहुत सुंदर श्राद्ध किया। कितना भी प्रेत योनि में कोई व्यक्ति क्यों न गया हो, गया में यदि श्राद्ध हो जाए, श्राद्ध विधि हो जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। तो श्राद्ध करके घूमते घूमते फिर से गोकर्ण अपने घर पर आए। गोकर्ण अपने घर पर रात को सोए हुए थे, उसी समय अचानक भयंकर भयंकर आवाज आने लगी। कभी कुत्ते की आवाज, कभी शियाल की आवाज, कभी सिंह की आवाज। रात को 1:30-2 बजे गोकर्ण जग गए और जगकर कहने लगे कि कौन हो आप, ऐसी आवाज क्यों कर रहे हो। तब वो बेचारा कुछ बोल नहीं सकता था। तब गोकर्ण जी ने कुछ मंत्र दिया और उस मंत्र के द्वारा उस प्रेत को बोलने की शक्ति आई। तो आर्त स्वभाव में लिखा है, आर्त स्वभाव में धुंधुकारी कहने लगा कि अहम भ्रातोस्मि, हे गोकर्ण जी मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और मैंने बहुत पाप किए हैं इसलिए मेरी कमोत हुई है और मैं प्रेत बना हूं। भैया मैं बहुत दुख भोगत रहा हूं, ये प्रेत योनि में मुझे बहुत कष्ट हो रहे हैं, कृपया करके मेरी प्रेत योनि से मुक्ति करो। तब गोकर्ण ने कहा कि मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध गया में कर आया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई। तब धुंधुकारी कहता है कि भैया एक नहीं, गया में 1000 मेरे लिए श्राद्ध करो फिर भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता है, इतना पाप मैंने किए हैं, तब क्या करूं। तब गोकर्ण कहने लगे अब गया में 1000 श्राद्ध करने के बाद भी जिसकी मुक्ति न हो तो फिर उसको कैसे मुक्त किया जा सकता है, मुझे तो नहीं पता है। एक काम करो, कल रात को तुम आना, मैं कल के दिन में ब्राह्मणों को और पंडितों को पूछ लेता हूं कि आपका उद्धार कैसे हो, मैं जरूर तुम्हें सहायता करूंगा। दूसरा दिन सुबह हुआ और गोकर्ण जी उनके गांव में रहने वाले बड़े बड़े वेद वेदांती पंडित ब्राह्मणों के पास, प्रकांड विद्वानों के पास जाकर कहने लगे कि गया में 1000 बार श्राद्ध करने के बाद भी किसी का उद्धार न हो, ऐसे व्यक्ति का उद्धार करने के लिए क्या करना चाहिए। सब लोग अपना पोथी पत्रा वेद वेदांत खोल खोल कर पढ़ने लगे परंतु किसी को उपाय नहीं मिला। सब लोग अंत में हाथ जोड़ दिए कि प्रभु इसका उपाय हमारे पास तो नहीं, क्योंकि 1000 बार श्राद्ध करने के बाद वह भी गया में किसी का उद्धार न हो तो उसका उद्धार तो मुश्किल है। लेकिन फिर भी यह बात या तो भगवान बता सकते हैं या भगवान के सर्वप्रथम शिष्य विवस्वान सूर्य देव बता सकते हैं। गीता में भगवान ने कहा है ना कि अर्जुन सबसे पहले यह ज्ञान, इमम विवस्वते योगम प्रोक्तावान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राहो मनु इक्ष्वा कवे ब्रवित। ये सबसे पहले सृष्टि के प्रारंभ में यह ज्ञान मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया था। तो ब्राह्मणों ने कहा कि सूर्य देव इसका उत्तर दे सकते हैं। गोकर्ण बहुत बड़े तपस्वी और भक्त थे, अपनी भक्ति से सूर्य की गति को रुका दिए और सूर्य देव प्रकट हुए और प्रकट सूर्य देव को प्रश्न पूछे कि 1000 बार गया में श्राद्ध करने के बाद भी जिसका उद्धार न हो उसका उद्धार करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तब सूर्यदेव कहते हैं कि मरे हुए व्यक्ति का, वो उसने जीवन में कितना भी पाप क्यों न किया हो, मरे हुए व्यक्ति का यदि उद्धार करना है, उसको परम गति प्राप्त कराना है, तो उसके लिए एकमात्र उपाय है, वह है 7 दिन तक श्रीमद् भागवत का श्रवण करना। श्रीमद् भागवतम की सप्ताह सुनकर मरे हुए व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। हरे कृष्णा
हरे राम 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 हरे हरे।
लगातार 7 दिन भागवत कथा सुनकर जीव का उद्धार हो सकता है। इतना कहकर सूर्यदेव चले गए। बहुत बड़ा प्रश्न उठा, भागवत कथा कौन करेगा? गांव वालों ने कहा, गोकर्ण जी आपसे बड़ा कथाकार कौन हो सकता है? गोकर्ण जी व्यासपीठ के ऊपर बैठे, आजू बाजू के सभी गांवों को पता चला कि यहां पर भागवत सप्ताह हो रही है, हजारों हजारों की मात्रा में लोग जुटे। और उस समय जहां पर गोकर्ण कथा कर रहे थे उसी के सामने एक बंबू गाड़ा गया। उस बंबू में 7 गांठ थी, पता है ना बंबू में गांठ होती है, उस बंबू में 7 गांठ थी। और वह धुंधुकारी जो प्रेत योनि में था वो उस बंबू में आकर बैठ गया। यहां पर जन्मा धस्य यतोन आदि तरथ चार्थे शुभिज्ञ सुरात, भागवत सप्ताह प्रारंभ हुई। प्रथम दिन था, सुबह का प्रथम सत्र समाप्त हुआ, सब लोग अपने अपने घर चले गए चाय पानी पीने। फिर शाम को 4 बजे फिर से आए, फिर से कथा सुने। और जब पहले दिन के शाम की कथा समाप्त हुई, आश्चर्यमय घटना कि पहले दिन की कथा समाप्त होने के कारण उस बांबू की एक गांठ फट गई, टूट गई। दूसरे दिन की कथा समाप्त होने पर दूसरी गांठ फटी। वैसे 3, 4, 5, 6, 7 सातवां दिन जब समाप्त हुआ, आश्चर्यमय घटना कि वह सातवीं गांठ फटी और उससे वह प्रेत योनि में जो धुंधुकारी था वह चतुर्भुज रूप में, मनुष्य रूप नहीं, शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारण करके प्रकट हुआ। और उसी समय भगवान श्री विष्णु के पार्षद पुष्पक विमान लेकर आए और विमान में उस प्रेत योनि में जो धुंधुकारी था वह चतुर्भुज रूप में हो चुका था, उसे लेकर भगवान के धाम में ले जाने के लिए विमान में बिठाकर जैसे ही उड़ने गए तो सभी लोगों ने विमान को पकड़ लिया। अब सबसे पहले तो यह सुनिए कि प्रेत योनि में था धुंधुकारी, और प्रेत योनि से अच्छी योनि है मनुष्य योनि, और उसे भी अच्छी है पार्षद योनि। 7 दिन कथा सुनने पर प्रेत योनि में रहने वाला धुंधुकारी चतुर्भुज रूप में भगवान का पार्षद बनकर भगवान के धाम में जाने लगा। परंतु गांव के लोगों ने सोचा कि ये तो प्रेत था, हम तो उससे अच्छे मनुष्य है, 2 आंख है, 2 कान है, बहुत सुंदर बाल है, शरीर है, हमने तो धुंधुकारी जितने पाप भी नहीं किए थे, तो जितनी कथा हमने सुनी उतनी धुंधुकारी ने सुनी, जितनी कथा धुंधुकारी ने सुनी उतनी हमने सुनी, तो आप धुंधुकारी को ही लेकर क्यों जा रहे हो, हम क्यों नहीं लेकर जा रहे हो? विमान को जाने नहीं दिया, तो धुंधुकारी को आप क्यों लेकर जा रहे हो और हमें क्यों लेकर नहीं जा रहे हो? इस प्रकार से कहने लगे। तब विष्णु दूतों ने, भगवान के पार्षद ने उत्तर दिया कि हे प्रिय भक्तों, क्योंकि धुंधुकारी बहुत दुखी था, उन्हें अपनी भूल का एहसास था, इसलिए एक चित से एक ध्यान से भागवत कथा सुन रहा था, और भागवत खत्म हो जाने के बाद वह जो सुना था उस भागवत कथा को मनन करता था, और आप लोग चाय पानी करने घर पर चले जाते थे। एक तो कथा आधी शुरू हो उसके बाद आते थे, और फिर घर पर चाय पानी के लिए घर पर, तो आपकी तरह ये नहीं सुन रहा था, ये बहुत ध्यान से सुन रहा था, मन और चित लगाकर सुन रहा था, इसलिए इसका उद्धार हो। आप भी यदि मन और चित लगाकर भागवत कथा सुनो तो आपका भी उद्धार हो सकता है। इतना कह के भगवान के पार्षद चले गए, और ये सब लोगों ने मीटिंग की कि अब तो धाम में तो जाना है, अब तो एक्सपीरियंस हो गया है कि कथा सुनकर धाम में जा सकते हैं, तो अब क्यों ना जाए। तब धुंधुक गोकर्ण जी को प्रार्थना करने लगे कि अब दूसरी कथा मार दो, दूसरी कथा कर दो जिससे हम अब ध्यान से सुनेंगे। गोकर्ण जी कहने लगे, चलो तुम्हारा भला होता है तो दूसरी बार प्रारंभ करता हूं। दूसरी कथा का आयोजन हुआ, दूसरी बार सप्ताह हुई और अब तो सब लोग बोरिया बिस्तर लेकर आकर बैठ गए थे। वक्ता पुराणी जी आए उसके पहले ही आकर बैठ जाते थे आदर सम्मान करने के लिए, और बहुत सुंदर तरीके से कथा सुने, मनन किए, स्मरण किए। और सातवें दिन में भागवत में वर्णन है, सातवें दिन जब वह कथा समाप्त हुई तब आकाश के मार्ग से हजारों हजारों विमान आने लगे और जितने भी लोग थे सब लोग चतुर्भुज रूप में होकर उस विमान में सवार होकर भगवान के धाम में चले गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यह है भागवत सप्ताह श्रवण करने का फल। भागवत सप्ताह श्रवण करने से जीवित और सुंदर व्यक्ति तो भगवान के धाम में जा ही सकता है, परंतु पापी व्यक्ति मरने के बाद प्रेत योनि में भी क्यों न गया हो वह भी भगवान के धाम में जा सकता है। इसलिए भक्तों, आज से यहां इस चंदनवाड़ी में भागवत सप्ताह का आयोजन हुआ है और यह भागवत सप्ताह गंगा के समान पवित्र है, गंगा के धारा के समान है। वास्तव में एक गंगा तो वह है जो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक बहती है, हजारों हजारों लोगों को पवित्र करते चलती है, परंतु उस गंगा में स्नान करने के लिए देहरादून एक्सप्रेस में बैठकर हरिद्वार उतरना होगा। परंतु उससे भी जो बड़ी गंगा है भागवत कथा रूपी गंगा, वे चलकर आपके आंगन में आ चुकी है, आपके घर तक आ चुकी है। अब इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि गंगा घर से होकर निकल रही है, उसमें स्नान करने की बात तो दूर रही, आचमन भी नहीं करते हैं। ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। परंतु आज से यहां पर भागवत कथा रूपी गंगा प्रारंभ होने जा रही है। सभी भक्तों से नम्र निवेदन है कि इस गंगा में अवगाहन कीजिए, स्नान कीजिए। इसलिए हम सभी भक्तों को इसमें आमंत्रण दे रहे हैं, सभी भक्तों को यहां पर बुला रहे हैं। आवो भाइयो आवो बहनों कथा गंगा नावो, सब लोग आइए इस कथा गंगा में स्नान करने के लिए। बाहर खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, सब लोग स्नान कर सकते हैं।
आवो भाइयों आवो बहनों कथा गंगा नावो,
आओ भाइयों आवो बहनों कथा गंगा नावो।
वैष्णव थवा माटे देवाजे
Love, love, love.
दे रहे हैं कि आप आइए इस भागवत गंगा रूपी भागवत में स्नान करने के लिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। यह भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सुनने के लिए सब लोग तरसते हैं। आप 500 साल केवल पीछे चले जाइए, इस भागवत का श्रवण करने के लिए बड़े बड़े राज राजेश्वर महाराज अपने राज रजवाड़े छोड़कर लाखों लाख रुपए की धन संपत्ति नौकर चाकर सब कुछ छोड़कर जंगल में जाया करते थे ये भागवत श्रवण करने के लिए। शोभिर देश का राजा रहुगण गंगा सागर, राजर्षि भरत, जिस राजा से यह भारत वर्ष का नाम हुआ है, राजा भरत भी भागवत सुनने के लिए जंगल में चले गए। एक से एक राजा महाराजा भागवत सुनना चाहते थे। और मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, देवता गण भी यह भागवत सुनने के लिए लालाहित रहते हैं। कभी नहीं मरने वाले देवता अमर हैं, कभी मरते नहीं हैं। कभी नहीं मरने वाले देवता जब इस भागवत को सुनना चाहता है तो कभी भी मरने वाला मनुष्य इस भागवत को क्यों नहीं सुनेगा। मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि कोई भागवत नहीं सुनता है, भागवत में लिखा गया है, परीक्षित महाराज कहते हैं कि भागवत न सुनने वाला कसाई है। निवृत्त तर्षे उपगीय मानाद भवोश दासोत्र मनोभिरामात का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजित विना पशुगनात। सभी ओर से सुख संपदा कल्याण मंगल देने वाली यह भागवत कथा जो सुनता नहीं है वह पशुगनाती है, वह कसाई है। प्रश्न हो सकता है, कसाई तो उसे कहा जाता है जो प्राणियों को मारते हैं, भागवत नहीं सुनने वाले को आप कसाई क्यों कह रहे हो? क्या भागवत नहीं सुनकर कसाई बन गए हम? किस प्रकार आचार्यगण अपनी टीकाओं में समझाते हैं कि इस संसार में जो लोग प्राणियों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, वो तो कसाई है ही, वो तो पापी है ही, परंतु भागवत नहीं सुनने वाला किसी के शरीर को नहीं काट रहा है, भागवत नहीं सुनने वाला अपने आत्मा का हनन करने वाला है, आत्मघाती है। और आत्मा का हनन करने वाला सबसे बड़ा दोषी है, सबसे बड़ा पापी है। अपनी आत्मा को अर्थात अपने आप का उद्धार करना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। सभी शास्त्र, सभी भक्त, वेद पुराण सब लोग एक स्वर से कहते हैं, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी। मनुष्य जीवन प्राप्त करके भागवत सुनकर भजन नहीं किया तो जीवन शव समान सो प्राणी, तो उनका जीवन शव के समान है। मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला है कि हम भगवान की भक्ति करें। ये दो कान क्यों मिले हैं? सवाक यात से गुणान गृणीते, ये कान भगवान की लीला भगवान की कथा सुनने के लिए मिले हैं, नहीं कि फिल्म के गाने सुनने के लिए। अब देने वाला जब देता है तो क्यों कैसे इस्तेमाल करना है वह भी कहता है। अब आप सोनी कंपनी का टीवी खरीद कर लाओगे तो उस टीवी को कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है वह भी बताएंगे। टीवी किसी के कपड़े वॉशिंग मशीन के लिए यूज नहीं किया जाता है। कौन सी चीज क्यों कहां यूज करनी है ये बनाने वाला कहता है। बनाने वाले ने क्या कहा है, कान का इस्तेमाल कैसे करना है? कहते हैं सवाक यात से गुणान गृणित, संस्कृत समझने वाले समझ गए होंगे, ये कान भगवान का गुणगान सुनने के लिए, क्षमा कीजिए, ये वाणी भगवान का गुणगान करने के लिए मिली। और सुनोति तत्कर्ण कथा सकर्ण, यह कान भगवान की कथा सुनने के लिए मिले, वाणी भगवान की कथा भगवान का नाम बोलने के लिए मिले हैं, कान भगवान की कथा सुनने के लिए। और हाथ क्यों मिले हैं? करोच तत्कर्म करो मनश्च, यह हाथ भगवान के सामने जोड़ने के लिए मिले हैं। भगवान के सामने यह हाथ जोड़ने चाहिए और यह सिर भगवान के सामने झुकाने के लिए मिले। परंतु आज का कलयुग का मनुष्य धन्य है, अपनी पत्नी के सामने सिर झुका लेता है, हजाम के सामने सिर झुका लेता है, परंतु भगवान के सामने नहीं झुकाता है। दुर्भाग्य है संसार के लिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहां तक कहते हैं, सो सिर कटी संबर तुला, जोन नमत गुरु हरि पद मूला, जिसका सिर गुरु और हरि भगवान के चरणों में नहीं झुकता है ऐसे सिर को तो काट देना चाहिए। जिस काम के लिए यह सिर मिला है वह काम ही नहीं करना है तो यह शरीर क्या काम का है, शव के समान है। नहीं तो भक्तों आप इतना समझिए, यदि हम भक्ति नहीं करते हैं तो हमारे जीने में और पशुओं के जीने में क्या अंतर है? हमारे जीवन से यदि भक्ति नामक तत्व को निकाल दिया जाए, यदि हम भक्ति नहीं करते और करते हैं तो पशु में और हम में क्या अंतर है? हम केवल चार कार्य में लगे हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन। खाना खाते हैं, सोते हैं, डरते हैं और मैथुन बच्चे पैदा करते हैं। पशु क्या करते हैं? वही तो करते हैं। एक कुत्ता खाना खाता है, बच्चा पैदा करता है, किसी से डरता है और सोता है। आहार निद्रा भय मैथुन हमसे सामान्य ये तत् पशु भैर नराणाम, भजन नहीं करते हैं तो पशु और नर समान है। परंतु धर्मो ही एको अधिको विशेष, धर्मे न विहीन पशु भैर नराणाम। मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है धर्म का पालन करने के लिए, भागवत और गीता के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। भक्तों आज के इस सत्र में कांत करते हुए यही कहना चाहता हूँ, मनुष्य जीवन मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए। भगवान की भक्ति का अर्थ होता है भागवत और गीता को सुनना और भगवान के नाम का जप करना। अब हम कल मिलेंगे, आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। कुछ अनाउंसमेंट है, प्रभु जी करेंगे।